मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 14 जुलाई 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों को मालूम है कि एकेडमी की अभी एक बैच तो अभी अक्टूबर में होने वाला है और नेक्स्ट बैच फरवरी 2016 में होने वाला है। तो अभी फरवरी 2016 के बैच के लिए एडमिशन्स ओपन हैं, अक्टूबर के बैच के एडमिशन्स बंद हो चुके हैं। उसके लिए दो नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दो नौजवान साथियों के नाम हैं, एक हैं विकास कुमार चंद्राकर जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और दूसरे हैं श्याम सुंदर आगरा से। तो विकास और श्याम सुंदर, मैं आप दोनों साथियों का एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि अभी अभी सिविल सर्विस के रिजल्ट आए हैं और जब भी ऐसी स्थिति होती है तब सारे स्टूडेंट चार्ज्ड होते हैं, उनमें एक जोश होता है, नहीं हम भी करेंगे। लड़कियों के लिए रेणु राज और इरा सिंघल आदर्श बन जाएंगी, लड़कों के लिए हर्ष भगत और जो जिन जिन को भी आप अपने आसपास देख सुन रहे हैं वो आपके लिए आदर्श होते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सबके आदर्श होते हैं। अगर हम लोग अपनी जिंदगियों के बारे में याद करें तो आज भले कोई भी बहुत बढ़ चढ़ करके दोस्तों हम लोग बात कर लें, लेकिन हम लोगों की जिंदगी की भी शुरुआत बिल्कुल उसी तरीके से हुई है जिस तरह से आपकी हुई है। उसी तरह की भय, उसी तरह की आशंकाएं, उसी तरह का दबाव, उसी तरह का तनाव, चिड़चिड़ापन, क्या होगा क्या नहीं होगा, द्वंद्व करें न करें, छोड़ें, निराशा, जितनी चीजें आप भोग रहे हैं, सच पूछिए तो वो सारी चीजें हर वो भोगता है जो उस दौर से गुजरता है। और मित्रों, कभी इस बात को आप ये मानकर मत चलिएगा कि वो लोग कुछ बड़े विशिष्ट किस्म के बने होते हैं या उनमें ये सारी चीजें नहीं होती। हाँ, एक बात उनमें जरूर होती है कि वो इन सबको मैनेज करना जानते हैं, अगर हम आज के लैंग्वेज में बात करें तो, यानी कि वो ये जानते हैं कि ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं तो हम अपने लिए क्या करें, यानी कि एक बहुत सिंपल सी समझदारी है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े फिलॉसफी की जरूरत नहीं पड़ती। बारिश हो रही है, क्या करेंगे आप, बारिश को रोक लेंगे? नहीं। अगर आपको भीगने का मन है तो जाइए खुलेआम में भीगिए, लेकिन आप भीगना भी नहीं चाहते, लेकिन बाजार भी जाना है तो सिंपल सी चीज है, छतरी हाथ में ले लीजिए, तान लीजिए खोल करके, बात खत्म। तो वो लोग जानते हैं, छतरी तानना जानते हैं कि हाउ टू मैनेज दिस ऑल प्रॉब्लम्स। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको हम कैसे अपने अनुकूल बनाएं, चाहे वो कितनी भी निगेटिव और विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना हो। मित्रों, आज के मोटिवेशन में मैंने थोड़ा सा ये पार्ट जानबूझ करके जोड़ा है। सिविल सर्विस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं और डेफिनेटली हम उनके बारे में अब आज भी बातें करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए आज मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए और एक मुझे अवसर भी मिल गया। कल मित्रों, अगर आप लोगों ने चैनल्स पर देखा हो तो एक फिल्म का प्रोमो आया है, उस फिल्म का नाम है माझी द माउंटेन मैन, ये फिल्म का नाम है। केतन मेहता इस फिल्म को बना रहे हैं। केतन मेहता आप जानते हैं कि बहुत रिनाउंड फिल्म मेकर हैं, बहुत उनका सम्मान है क्योंकि उनके फिल्मों में थॉट्स होते हैं, उनके फिल्मों में रियलिस्टिक अप्रोच होती है, वो इस पर फिल्म बना रहे हैं। आप लोगों ने एक कहानी जो सच थी ये पढ़ा होगा और सुना भी होगा, और वो कहानी छोटी सी ये है दोस्तों, जो रियल स्टोरी है वो ये है और अभी की है कि एक आदमी, गांव में एक आदमी रहता था, तो उस गांव के लोगों को शहर जाने के लिए लगभग 44 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी क्योंकि बीच में एक पहाड़ पड़ता था। उस पहाड़ की वजह से 44 किलोमीटर की दूरी हो गई थी। यदि उस पहाड़ को तोड़ दिया जाता तो वो पूरी की पूरी दूरी लगभग 12 किलोमीटर की हो जाती, तो लोग घूमकर जाते थे, 44 किलोमीटर की यात्रा करते थे। तो ये जो व्यक्ति जिसको फिल्म में उन्होंने माझी कहा है, इनकी पत्नी भी जा रही थी, शहर के लिए जा रही थी। जब वो पहाड़ जब जा रही थी तो उनका पैर फिसला पहाड़ पर चढ़ी, या जैसा भी है स्टोरी, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि प्रोमो से छोटी सी चीजें पता लगती हैं और फिर अखबार में भी मैंने ये खबर पढ़ी थी। तो उनका पैर फिसला और उनकी डेथ हो गई, और जब उनकी डेथ हो गई तो
तो स्वाभाविक है कि पत्नी के निधन ने माँ जी को हिला कर रख दिया और उसने फैसला किया कि या तो ये पहाड़ रहेगा या मैं रहूंगा, आइदर यू और मी, या तो पहाड़ तुम रहोगे या मैं रहूंगा। और फिर उस दिन से एक छोटी सी छेनी और हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ को काटने में लग गया और अंततः जीते जी उसने उस पहाड़ को काट कर सपाट कर दिया, उस पहाड़ पर से रास्ता निकल गया। मित्रों, ये कहानी अभी भी मैं जब आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरे रोए खड़े हो गए हैं। मनुष्य की जिजीविषा की कहानी है और इसमें जीवन के दो बहुत बड़े ऐसे मूल मंत्र निकल करके आ रहे हैं। मित्रों, मैं समझता हूं कि आप सबके लिए तो खासकर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पहाड़ तो भले ही नहीं काट रहे हैं लेकिन पहाड़ जैसी परीक्षा को तो पार करने की चुनौती आपके सामने है। दोस्तों, पहली बात ये कि जिस टॉपिक के बारे में हमने दो सप्ताह तक बात की है, प्रेम प्यार, वो क्या है? सच मायने में ऐसे ही लोग प्यार को सही अर्थों में डिफाइन करते हैं। वो सही अर्थों में अपनी पत्नी से प्यार करता था और पत्नी की उस अपनी पत्नी के प्रति प्यार का स्मारक उसने पहाड़ काट कर बनाया और इस रूप में बनाया कि दूसरे किसी प्यार को अपने प्यार इस तरह से न खोना पड़े, किसी और दूसरे की पत्नी का इस तरह से निधन न हो या किसी के पति का निधन न हो। उसने अपने प्यार को इनलार्ज कर दिया, उसने अपने प्यार को कर्म में बदल दिया। वो रोते हुए चुपचाप घर में नहीं पड़ा रहा, वो लैला मजनू की तरह जगह जगह रेगिस्तान में घूमा नहीं, वो देवदास की तरह उसने अपने आप को शराब में नहीं डुबा लिया, उसने उसका प्रतिदान किया, उसका प्रेम फैलकर मनुष्य मात्र के प्रेम में कन्वर्ट हो गया और यही उसके प्रेम के अमर होने की सबसे बड़ी निशानी है। इसीलिए आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मित्रों, प्रेम की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं कि आप सबके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं हैं। जिन्हें ये भावनाएं मजबूत बना रही हैं उनका स्वागत है, उनकी मैं तारीफ करता हूं और उनकी इस भावना को प्रणाम करता हूं। लेकिन जो कमजोर बन रहे हैं इसकी वजह से, या जिनके अंदर की ये भावना उसे कमजोर बना रही है, मैं उन्हें सतर्क करना चाहूंगा। प्रेम मजबूत बनाता है माझी की तरह, और फिल्म के टाइटल है माझी द माउंटेन मैन, पर्वत मनुष्य, पर्वत के समान मनुष्य, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा, पर्वत को पराजित कर देने वाला मनुष्य। और उसके पीछे जो मोटिवेशन है मित्रों, वो प्रेम का मोटिवेशन है। पहला संदेश आप सबके लिए। दूसरी बात मित्रों, आपको क्या लगता है कि जिस दिन वो छेनी और हथौड़ा लेकर निकला होगा और पहले दिन उसने उस चट्टान पर, पहाड़ के किसी पत्थर पर पहला वार किया होगा, तो उसको कैसे लगा होगा? उसके सामने पूरा का पूरा पहाड़ था और वो देख रहा था कि उसने पहला वार किया है तो पत्थर पर तो कोई असर ही नहीं हुआ है, खरोच तक नहीं आई है, बल्कि जब अपनी छेनी को पकड़कर वो हथौड़े से वार कर रहा था तो उसका हाथ झंझना गया। उसको लगा कि मैं अब छेनी पर हथौड़ा मार ही नहीं सकता। उसका हाथ झंझना गया और पत्थर पर खरोच भी नहीं आई, और वो देख रहा है कि इतना सारा पत्थर सामने सिर उठाए खड़ा है कि यह संभव ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि उसको संभव लगा होगा? बिल्कुल नहीं लगा होगा। लेकिन उसने चैलेंज यही किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, या तो मेरे जीते जी मैं तुमको खत्म कर दूंगा या फिर खत्म हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम बने रहना, हो सकता है कि बाद में किसी को सूझे तो और इसके आगे काम होता रहे और मेरा ये काम पूरा हो जाए। यदि मैं अपने जीते जी पूरा नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा इसको पूरा करेगा। बड़े काम तो ऐसे ही होते हैं मित्रों। तो यहां जो हम देखते हैं, जो दूसरा जो मैसेज हमें मिलता है, जो दिखाई देता है दोस्तों, वो मैसेज है पावर ऑफ कंटिन्यूटी। वो लगातार तोड़ता रहा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं, पूरी उम्र भर वो उसमें लगा रहा। तब जाकर के उसने पर्वत को तोड़ दिया। दोस्तों, आपको याद होगा, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, न्यूज सुनना न छोड़ें, ऑडियो डेली सुने, अखबार डेली पढ़ें, कंटिन्यूटी को बनाए रखें। मित्रों, मैं माउंटेन मैन नहीं हूं, मैं माझी नहीं हूं, लेकिन ये कहानी आप लोगों के सामने घट रही है, ये आप लोगों की ताकत बन सकती है। एक और कहानी न पता नहीं मेरे सामने तो नहीं घटी, जिसने इस कहानी को लिखा उसके सामने भी ये घटी थी या नहीं घटी थी किसी को नहीं मालूम, और वो कहानी थी खरगोश और कछुए की कहानी, आप सब जानते हैं, और उसमें कछुआ जीतता है। उससे भी बड़ी बात है कि खरगोश से जीतता है। कछुए की जीत में ही दोस्तों जो संदेश छिपा है वो पावर ऑफ कंटिन्यूटी का छिपा है, और यहां कछुए की बात मैं इसलिए कर रहा हूं मित्रों क्योंकि इस कहानी ने मुझे इतनी प्रेरणा दी है। ये कहानी एक बहुत बड़ा मोटा स्तंभ बनकर मेरे लिए इतना बड़ा सहारे का इसने काम किया है, और उसी के कारण आज शायद मैं आप लोगों के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आप लोगों को लगता होगा तो, अपनी बात कह पाता हूं और ऑडियो के जरिए आप लोगों के सामने पहुंचा सकता हूं। दोस्तों, मेरे लिए एक कछुआ था मेरी ताकत, जो पता नहीं जीता था या नहीं, सुनकर तो लगता है कि नहीं ही जीत पाया होगा, ये केवल एक प्रेरक कहानी ही है, लेकिन आपके सामने तो एक जीती जागती सच्ची कहानी है मांझी द माउंटेन मैन की। इस पर तो आपके अविश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता है मित्रों, जिंदगी में यही होता है। इरा सिंघल कितने अटेम्प्ट में यहां तक पहुंची, लंबा संघर्ष। कल मैंने आपको बसुमती का बताया था, 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन ही, 4th अटेम्प्ट में ये रैंक। मित्रों, आपके सामने किस्से हैं, निशांत जैन 2nd अटेम्प्ट में आगे, कोई बात नहीं। मैं सच पूछे तो सिविल सर्विस में जो इस तरह के स्टूडेंट जो सफल होते हैं, नो डाउट इनको मैं एक सिविल सर्विस का जो नियम है, उस रूप में नियम नहीं कि कोई लॉ ही है, या एक जो है एक सिस्टम की बात करते हैं, जो एक योजना बनाने की बात करते हैं, उसमें मैं इन्हें अपवाद के रूप में मानता हूं। इसको इनको आप मॉडल बना करके नहीं चल सकते, वो एक पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऑल द टाइम ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो जब हम अपने लिए प्लान करेंगे तो याद रखिए, हम इस तरह से प्लान नहीं कर सकते कि साहब अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 3rd रैंक प्राप्त कर ली तो मैं यार फर्स्ट अटेम्प्ट में 30th रैंक तो ला ही सकता हूं। ले आएंगे, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कीजिए आ जाए, वो आपके लिए बोनस होगा। लेकिन जब आप अपना प्लान बनाएंगे तो प्लान फिर केवल 1 अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट का मत बनाइए दोस्तों। जब प्लान बनाएंगे तो पहाड़ को तोड़ने का प्लान बनाइए, एक लंबी योजना के लिए काम कीजिए, तब मुझे लगता है कि आप सफलता के ज्यादा करीब पहुंच पाएंगे और अंततः पहुंच ही जाएंगे। तो मित्रों, ये एक नया मुझे कल से एक जो प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि ये संदेश मुझे आप लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। अगस्त में फ्रेंड्स ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और मैं अभी से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप इस फिल्म को जरूर देखें। डेफिनेटली ये फिल्म आपके अंदर की ऊर्जा को फूंक मार करके एक बार फिर से गर्म करेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने जो हम लोग की जो एनालिसिस चल रही है, हम लोग कुछ समय तक और इस तरह की एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद दे दूं जिन्होंने बहुत सी सूचनाएं मेरे पास भेजी हैं और यहां तक कि लिंक भी भेजे हैं, जिसके कारण अब मेरे पास सिविल सर्विस के जितने भी स्टूडेंट्स अभी सफल हुए हैं उनकी पूरी मार्कशीट अवेलेबल हो गई है। शुरू के 10 स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं रिटेन में और इंटरव्यू में, वो मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। सच पूछे तो अब और भी जो दूसरी चीजें होनी चाहिए थी वो मेरे पास आप लोगों ने पर्याप्त रूप से उपलब्ध करा दी है दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस बात की तारीफ करता हूं कि आप लोगों में ये उमंग है, ये उत्साह है कि सर को हम इंफॉर्मेशन से ज्यादा मजबूत बनाएं ताकि सर ज्यादा अच्छा से अच्छा एनालिसिस कर सके। ये आप लोगों की भावना है, आप लोगों की इस भावना का मैं सम्मान करता हूं मित्रों। और आज जिन्होंने मेरे पास ढेर सारा मटेरियल भेजा है उसमें जिनके नाम है, राजू गौरव है गरखा बिहार के, ब्रिजेश वर्मा है सिद्धार्थ नगर के, इन्होंने लिखा है कि मिहिर पटेल जो 27th रैंक जिन्होंने हासिल की है, उनका सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट फिलॉसफी था। धीरज यादव हैं, और भी इस तरह के दूसरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिसमें मेरे पास आए हैं। संदीप दरणे हैं नासिक से, संदीप राय हैं, साहिल पांडे हैं, इस तरह से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे सूचना दी है। देवेंद्र शर्मा है जयपुर से, उन्होंने भी जानकारियां दी स्टूडेंट्स के बारे में कि कहां से कौन सेलेक्ट हुआ है, क्या हुआ है। तो मित्रों, अब मैं एक बात आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। प्लीज अब आप जो रिजल्ट के बारे में जो मेरे पास सूचना भेजेंगे, वो सूचना भेजे अगर या आपको किसी स्टूडेंट्स की डिटेल मार्कशीट मिल जाती है। डिटेल मार्कशीट का मतलब है कि जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स, सेकंड पेपर में कितने मार्क्स, इस तरह से डिटेल सारे हर पेपर वाइज उनके मार्क्स मिल जाएं, तब आप मुझे भेजिए, क्योंकि वो फिर मेरी एनालिसिस में और ज्यादा काम आएगी। अदरवाइज मैं समझता हूं कि जितना भी मैटर मेरे पास इकट्ठा हो गया है वो सफिशियंट है, अब उनकी जरूरत नहीं होगी। तो प्लीज आप लोग जानकारी देने के बारे में इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आज मुझे जितनी भी चीजें मिली हैं उसके आधार पर मैं थोड़े से आपको जो स्कोर है उनकी जानकारी देना चाहूंगा, और उसके आधार पर एक छोटी सी एनालिसिस करना चाहूंगा जो वक्त बचा हुआ है उसको आधार बनाकर फिर हम इसको लगातार इस पर बातें करते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास वैसे तो पूरी लिस्ट है जितने भी 1236 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सबके क्या क्या स्कोर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी अभी पूरी स्टडी नहीं कर पाया हूं। मैं हाईएस्ट और लोएस्ट सब देख करके आप लोगों से उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन मेरे पास एक और लिस्ट है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, जो फर्स्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स दिए हुए हैं। इसको लेकर के मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों से आज शेयर करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर से एक बार सतर्क करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस तरह की एनालिसिस को वेस्टेज ऑफ टाइम मत माने। दोस्तों, ये बेसिकली है क्या, हम सच पूछिए तो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी एक बहुत बड़े वीरान तो नहीं कहना, बहुत ही घने जंगल में अपना रास्ता ढूंढने जैसा है। लेकिन जो स्टूडेंट रास्ता जानता है वो जंगल को बहुत आसानी से पार कर लेता है। अदरवाइज आप भटक कर इस पेड़ के बीच में से थोड़ा सा रास्ता निकला तो वहां से निकल गए, उसके आगे गए तो पता लगा पेड़ अटक गया, तो फिर घूमे फिर किए, रास्ता ही ढूंढते रह जाते हैं, और सच पूछिए तो पूरा का पूरा समय इसी में वेस्ट हो जाता है। यदि आप बहुत अच्छे से प्लान समझ लेते हैं, रास्ता समझ लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने कल आपसे चर्चा भी की थी, तो आपके लिए यही चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि मुझे डर लगता है वो जो एक ट्रेडिशनल माइंड क्या ओल्ड माइंड, या मैं क्या कहूं, मैं सच पूछे तो मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, कि वो जो यूनिवर्सिटी वाली जो अप्रोच होती है ना, ऐसे दिमाग से मुझे सच पूछे तो थोड़ी सी घबराहट भी होती है और डर भी लगता है। घबराहट इसलिए होती है कि अब इनको कैसे इन चीजों की उपयोगिता बताई जाए। डर इसलिए लगता है कि ये मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इनके साथ कुछ नहीं होगा, तो अपना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए डर भी लगता है। मित्रों, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने माइंड सेट को तो चेंज प्लीज करें। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बताता हूं कि देखिए सिविल सर्विस क्या है। थोड़े बहुत वेरिएशंस हर साल होते रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते। फ्रेंड्स, जो टॉपर है ईरा सिंघल, उनको रिटेन में जो मेंस होता है उसमें मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार 920 नंबर मिले हैं, 920 मार्क्स। और फ्रेंड्स, ये जो 920 मार्क्स हैं इसकी दो सबसे बड़ी विशेषता है, मैं एनालिसिस करके बता। पहली विशेषता ये है कि पिछले साल के जो टॉपर हैं गौरव अग्रवाल, उनके मार्क्स थे 769। सोच के देखिए, इसका मतलब है कि इस बार ईरा सिंघल ने रिटेन में मेंस में पिछले बार की तुलना में ऑलमोस्ट 150 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया, 150 नंबर ज्यादा स्कोर किया गौरव अग्रवाल के। पिछले साल ऑलमोस्ट 44% मार्क्स थे मेंस में, और अभी जो ईरा सिंघल ने स्कोर किया है 49%, मतलब 6% अलग से स्कोर किया तो 120 नंबर 150 नंबर के आसपास जो भी है 120 नंबर के आसपास 150 नंबर के आसपास बैठे, क्योंकि इनका मार्क्स 49.73 आता है तो 50% समझ लीजिए। फ्रेंड्स इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? एक आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो बहुत सिंपल निष्कर्ष होगा कि ईरा सिंघल गौरव अग्रवाल से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि मेंस में रिटेन में इतने ज्यादा नंबर ले आना 150 नंबर और वो भी 1850 में 150 नंबर, मतलब परसेंटेज वाइज मैंने आपको बताया कि लगभग 6% बहुत बड़ी बात है लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है मित्रों? देखिए इसकी सच्चाई, कॉम्पिटिशन की सच्चाई मैं बता रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी की सच्चाई नहीं बता रहा हूं, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। पिछले साल जो मेंस का पेपर हुआ था वो बिल्कुल पहला पेपर था, जो पैटर्न आया था मतलब समझ लीजिए कि एक सेकेंड टाइप का उस तरह का पैटर्न था, उसको हैंडल करना उतना आसान सॉरी पहला ही था गौरव अग्रवाल ने, तो जो नया पैटर्न आया उसके वो सबसे पहली बार उसका मुकाबला करने वाले लोगों में थे। पता नहीं था पेपर किस तरीके का आएगा, पता नहीं था किस तरह की एनालिसिस होगी, तो डेफिनेटली सारी चीजें जो हो रही थी वो एक तरह से अनुमान पर आधारित थी। जब अनुमान पर चीजें आधारित थी तो एग्जैक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रिजल्ट तो निकलता है क्योंकि सिलेक्शन पर बेसिस है, तो गौरव अग्रवाल ने उसमें टॉप किया। लेकिन जब ईरा सिंघल जब एग्जाम में बैठी तब हमारे पास मॉडल के तौर पर एक साल का पैटर्न मौजूद था, हम देख सकते थे, हम समझ सकते थे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस एरिया से क्वेश्चंस होते हैं, ये इस तरह की एनालिसिस पूछी जाती है, क्वेश्चन पेपर की इतनी लेंथ होती है, इतना हमें टाइम कवर करना है, अपनी स्पीड को इतना बढ़ाना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने रिटेन में अवेलेबल थी। अब अनुमान की बात खत्म हो गई थी, यानी कि अब आप अपनी प्लानिंग अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से कर सकते थे और ईरा सिंघल ने यही किया। तो ईरा सिंघल के जो 150 मार्क्स हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, उसको मैं मानता हूं कि एक प्लान के मार्क्स हैं, क्योंकि वो प्लान तरीके से तैयारी कर सकती थी। इसीलिए मैं इसको बहुत टैलेंट का फर्क नहीं मानता, दोनों ने टॉप किया है और उस मायने में दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं। दिस इज प्रूफ ऑफ द पावर ऑफ प्लानिंग। ये किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से जब आप पढ़ाई करते हैं तो कैसे वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है, इसका एक प्रमाण है। राइट फ्रेंड्स, मैं आगे चल करके और बात करूंगा आपसे। इंटरव्यू में ईरा सिंघल को काफी कम मार्क्स मिले हैं, 162 है, काफी कम मार्क्स। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अगर सच पूछे तो जो पूरे के पूरे 10 लड़कों की जो लिस्ट है उसमें ईरा सिंघल के इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स है, 162 है। इसके बाद जो सेकेंड पोजीशन पर जो है वो जो मार्क्स मेरे सामने आए हैं निधि गुप्ता के हैं, 179 है, और जो सबसे अधिक मार्क्स है वो 206 है, नीतीश के 206, 10 लोगों के बारे में बता रहा। और मजेदार बात है कि ये 206 मार्क्स ही गौरव अग्रवाल को भी मिले थे। मैं पूरी लिस्ट देखने के बाद आपको बताऊंगा, और मुझे लगता है दोस्तों कि 210 से शायद ही किसी को अधिक नंबर मिल पाते हों 275 में से। फ्रेंड्स टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि टोटल मार्क्स जो गौरव अग्रवाल के पिछले जो टॉपर्स के थे वो 975 थे, और अभी जो ईरा सिंघल के जो टोटल मार्क्स हैं 920 मैंने बताया कि मेंस में थे, इंटरव्यू में 162 हैं, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं उनके 1082, 1082 नंबर टोटल। अब ईरा सिंघल की जो सबसे बड़ी ताकत है आप देखिए, मैं आपको बता, इंटरव्यू में वो सबसे कम है विद इन 10, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेंस है, क्योंकि सेकेंड पोजिशन में जो जिस स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए हैं 858 है, मतलब ऑलमोस्ट 60 मार्क्स कम। दोस्तों ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये बात अलग है कि उन्होंने 198 इंटरव्यू में लेकर के आई रेणुराज और टोटल मार्क्स हो गए 1056। होने का मतलब है कि अंतर रह गया मुश्किल से 20-25 मार्क्स का टोटल में, लेकिन रिटेन में मजेदार बात है कि 920 के आसपास भी कोई नहीं है, और सारे के सारे स्टूडेंट मतलब रेणु राज के भी जो रिटेन में 858 है तो सेकेंड टॉप पर है, रिटेन को हम मान करके चले। रिटेन की एक बड़ी विचित्र कहानी है, और जो थर्ड टॉपर है रिटेन की 846 वो भी रिटेन मेंस की भी थर्ड टॉपर है, और फोर्थ में जो 832 है रिटेन में वो भी रिटेन की फोर्थ टॉपर है। और तो ये हम देख रहे हैं, यहां ये पता लग रहा है कि जो सफलता का जो सबसे बड़ा रहस्य है मित्रों, इसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा, वो आपके रिटन मार्क्स में है, मेंस के जो रिटन मार्क्स होते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। और यहां इरा सिंगल ने अपने बाकी सभी साथियों को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट 10 में जो स्टूडेंट होते हैं, मान करके चलिए कि सबके सब ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और मैं तो यहां तक मानता हूं कि अगर इन दसों की फिर से एग्जाम करा दिया जाए तो पता लगेगा ये हेर फेर हो जाएगा कि सेकेंड वाला टॉप कर रहा है, फर्स्ट वाले वो फोर्थ पर है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उनमें बेसिक टैलेंट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, वहां तो ढेर सारे और दूसरी चीजें काम करती हैं। तो यहां इरा सिंगल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रिटेन के मार्क्स। फ्रेंड्स, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रिटेन की तैयारी आप सबको ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। दूसरी चीज प्लान तरीके से करनी है, जो इरा सिंगल और गौरव अग्रवाल के मार्क्स को कंपेयर करते हुए मैंने आपसे जो चर्चा की थी। फ्रेंड्स, अब मैं एनालिसिस वाले पार्ट को यहीं खत्म करता हूं। अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज को, क्योंकि मैं जो डेली के जो न्यूज है उनको आप देख रहे हैं कि मैं कभी भी मिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी इंपॉर्टेंस को जानता हूं। हां, मैं उतने डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, और इसलिए भी नहीं जा रहा हूं दोस्तों कि न्यूज में डिटेल्स में जाने की उतनी जरूरत नहीं होती है, आप खुद उनको इंप्रूव कर सकते हैं, और ढेर सारी चीजें पीछे से चलती आ रही हैं, इसलिए हम कहीं किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। फिर जो पहली खबर थी वो पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को लेकर के थी। आप सिविल सर्विस के पॉइंट्स आप देखेंगे तो मैं आपको केवल ये कहना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है, न्यूज के आधार पर बता रहा हूं, आपको मालूम है कि वो कश्मीर का मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में ये तीसरी मुलाकात थी शायद, लेकिन अभी तक मुलाकात के दौरान ऐसे कोई टर्निंग पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है जिसको हम बड़ी उपलब्धि के रूप में समझ सकें या ये मान सकें कि दोनों देशों के संबंध में कोई बहुत ज्यादा सुधार होने की उम्मीद बन रही है। यानी कि जो चीज अभी तक चली आ रही है लगभग लगभग वही स्थिति है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। जो नेक्स्ट जो खबर थी और किसी मायने में कम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मध्य एशिया प्लस रूस की यात्रा पूरी हो चुकी है। इसमें आपको दो पॉइंट्स बनते हैं, दो प्रश्न बनते हैं आप कह लीजिए, और आपकी तैयारी का मैं समझता हूं कि जो एक लाइन भी तैयारी की जो होनी चाहिए वो लगभग लगभग इसी पैटर्न पर होनी चाहिए दोस्तों। अब आर्टिकल्स आने शुरू होंगे, मैं आपके पास भेजूंगा आर्टिकल, अब एक कंप्लीट यात्रा पर आएगी। अभी तो हम देख रहे हैं कि जो टूर था तो जिस देश में गए हैं उस देश के साथ संबंधों पर आ रहा है। अब अभी तक हम संतरे की फांक ले रहे थे, अब हम पूरी तरह से संतरा लेंगे जिसके अंदर सारी फांक पैक होंगी, ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या और होना चाहिए था। तो इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी, पहला भारत और रूस के संबंध। मित्रों, आज मेरे पास वक्त नहीं है कि भारत रूस अमेरिका और चीन के संबंधों का मैं विश्लेषण कर सकूं, लेकिन किसी दिन मैं इसका विश्लेषण करूंगा। स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में स्टूडेंट्स को ध्यान होगा कि मैंने भारत अमेरिका और चीन ये जो त्रिकोण है इस त्रिकोण के बारे में चर्चा की थी, लेकिन अब वो चतुष्कोण हो गया है, वो चतुर्भुज बन गया है, चौथा कोण और आ गया है, वो रूस का कोण आ गया है। लेकिन एक पक्ष को कुल मिलाकर के ये रहा है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को रूस यात्रा में कोई बहुत बड़ी सफलता उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है कि रूस ने कोई बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया हो। दूसरी चीज जो इस यात्रा से निकल करके आ रही है सिविल सर्विस के पॉइंट से दोस्तों, वो ये है कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हुए अब वो छोटी देशों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने उस समय भी की थी जब मध्य एशिया की यात्रा की शुरुआत ही हो रही थी कि कैसे छोटे छोटे देशों के साथ भारत अपने संबंधों को बहुत घनिष्ठ बनाने की कोशिश में है, और उसमें दो तीन चार सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे होते हैं। पहला नो डाउट आतंकवाद और विश्व आतंकवाद, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, और तीसरा व्यापार। फिर उसके साथ तो जो क्षेत्र का शक्ति संतुलन है वो उसमें जुड़ ही जाता है। अभी जो स्टूडेंट्स अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीजें उस तरीके से पकड़ में नहीं आएंगी, लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप तैयारी करेंगे तो आप में भी उस तरह की मेच्योरिटी आने लगेगी और आपको आप चीजें भी समझने लगेंगे। तीसरी जो खबर थी दोस्तों वो यूरो जोन को लेकर के थी, खासकर ग्रीस के मामले को, कि अब यूरो जोन के जो देश हैं यूरो समूह के, वो ग्रीस को बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार हो गए हैं कुछ शर्तों के साथ। ग्रीस तैयार हो गया उन शर्तों को मानने के लिए, तो एक बार लग रहा है कि जैसे ग्रीस का संकट खत्म हो जाएगा और यूरो जोन भी बिखरने से बच जाएगा, और इसके कारण पूरी दुनिया ने भी बहुत राहत की सांस ली है। आपको मालूम है कि जिस दिन ग्रीस ने जनमत के आधार पर यूरो जोन से बाहर जाने का फैसला लिया, यूरो जोन से बाहर जाने का तो नहीं ये कहना चाहिए कि शर्तें न मानने का फैसला लिया था, उसी दिन दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम हुए थे, और कल जब वो यूरो जोन ने उसकी बात मान ली है तो शेयर मार्केट फिर से न केवल भारत का ही बल्कि दुनिया के शेयर मार्केट फिर से बढ़ने लगे हैं। तो आपकी थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए कि ये शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है। और इसके बाद दोस्तों फिर एक शब्द था न्यूज़ में, वो खासकर आंध्र प्रदेश की बात है कि पुष्करालु मेला, ये एक शब्द है पुष्करालु मेला, न्यूज़ में आपने सुना कि आंध्र प्रदेश में होता है और इसकी भी जो महत्ता है वो एक तरह से कुंभ मेले की तरह ही है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि प्री में ये पुष्करालु मेला पूछ लिया जाए कि किस राज्य में होता है, या आपको सुमेल करने के लिए दे दिया जाए पुष्कर मेला, पुष्करालु मेला और कुंभ मेला और कहाँ कहाँ होते हैं और उसके आगे स्थान के नाम दे दिए जाएँ, और तो आप उसे सॉल्व करें। थोड़ी सी सतर्कता से आप न्यूज़ सुनेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूज़ में 60% मार्क्स स्कोर कर लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, तो पुष्करालु के बारे में आप थोड़े से सतर्क हो जाएं। तो मित्रों न्यूज़ के बारे में इतने ही, जहां तक न्यूज़पेपर का संबंध है आज मैं आपको बहुत सी कटिंग प्रोवाइड कर रहा हूं और जानबूझकर मैंने आज उसे अंडरलाइन भी नहीं किया है, आप लोग अपने अपने ढंग से उनका चयन करके आप लोग उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे। ये जरूर है कि मैं जितने कटिंग्स आपको प्रोवाइड करता हूं किसी न किसी मायने में कहीं ना कहीं उपयोगी होते ही हैं। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने ईमेल के चरण पर, तो मैंने जिन स्टूडेंट्स ने भी सूचनाएं भेजी हैं रिजल्ट्स के बारे में उनको मैं धन्यवाद दे चुका हूं। मित्रों मेरे पास तीन स्टूडेंट्स के मेल आए हैं, अभी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम हुए थे CAPF एग्जाम जिसको कहते हैं, तो तीन स्टूडेंट रोहित पांडे लखनऊ से, नीतीश कुमार बेगूसराय से और देवेंद्र शर्मा जयपुर से, उन्होंने एग्जाम के बारे में लिखा है कि वो अपीयर हुए थे और किस तरह से जो ऑडियो गाइडेंस उनको दिया गया, जो टॉपिक प्रोवाइड किए गए, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दिया गया था वो ज्यों के त्यों उनकी परीक्षा में पूछा गया और इससे उन सबको बहुत मदद मिली है। तो रोहित नीतीश और देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद इस सूचना के लिए, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और श्रोताओं की तरफ से भी अपने सभी श्रोताओं की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अंततः आप सब बहुत जल्दी अपनी सफलता का संदेश मुझे भेजें। मित्रों बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने छुटपुट छुटपुट तरीके से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने चाहा है कि कैसे मैं शुरुआत करूं, मैं बिल्कुल नया हूं, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि मेरी एक किताब आई है आप IAS कैसे बनेंगे, प्लीज़ आप ये किताब ले लें, तो आप देखेंगे कि ढेर सारे आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसमें आपको मिल जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि आपको IAS की परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। राजेंद्र नारायण आपने अपने पिछले बैकग्राउंड को लेकर के बात की है, देखिए सिविल सर्विस को आपके पिछले बैकग्राउंड से पिछले बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता, आप उस बात को दिमाग से हटा दीजिए, चाहे कोई ग्रेस मार्क से पास हुआ हो चाहे 5 बार कहीं फेल हुआ हो, अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनके सामने तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसके बाद किसी ने भी स्टूडेंट ने कितना इंप्रूव किया है, और इंटरव्यू बोर्ड को भी इससे कोई लेना देना नहीं है कि पीछे आप इतने कोई कमजोर था तो अब वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करें। मित्रों मुझसे बहुत स्टूडेंट्स बुक्स के नाम पूछते हैं और मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बुक्स के नाम नहीं बताता हूँ, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे लिए बुक्स मायने उतनी नहीं रखती हैं जितना कि पढ़ने वाला मायने रखता है, बुक्स वही होती हैं पढ़ने वाले अलग अलग होते हैं, रिजल्ट में बहुत रात दिन का अंतर होता है, बुक्स के बारे में इतने कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी स्तरीय किताबें होनी चाहिए। प्रतिभा तुमने जानना चाहा है कि सामाजिक और आर्थिक भूगोल जैसे शब्द का क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब है, हम किसान के बारे में बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, हम खनिज पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के जनजीवन के बारे में बात कर रहे हैं तो सामाजिक भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। भूगोल की किताब उसको कंप्लीट भूगोल मान करके आप चलें, और जब आप भूगोल की किताब कोई भी कंप्लीट लेंगे तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती ही हैं ऑटोमेटिक तरीके से शामिल होती हैं, इसलिए उसको लेकर के बिल्कुल परेशान न हो। और मित्रों, अब अंत में मैं एक विकास जाखड़ का मेरे पास मेल आया है। मित्रों, कल आपको ध्यान होगा कि मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया था कि जिनको जो राजस्थान का जो बेस्ट ऑटोनोमस कॉलेज है वहाँ फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हुआ और स्टूडेंट्स उनको बहुत ही ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं, जिसका श्रेय उन्होंने एकेडमी को दिया था। वो सेकेंड बैच के स्टूडेंट भी हैं और विकास जाखड़ का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने है। इन्होंने सिविल सर्विस में भी सब मेंस तक क्वालिफाई किया हुआ है और लगातार लगे हुए हैं। कल मैंने कहा था कि उन्होंने नाम नहीं लिखा था, तो उन्होंने मेल से सूचित किया है कि सर मैंने नाम लिखा था, वो किसी वजह से वो रह गया होगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। होता क्या है कि मेरे पास मेल्स प्रिंट के फॉर्म में आते हैं, मैं कंप्यूटर से सीधे, क्योंकि मुझे उस पर नोट्स बनाना पड़ता है और मैं आप सबके मेल्स को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, तो मैं प्रिंट के फॉर्मेट में ही लेता हूँ, तो हो सकता है कि प्रिंट निकालने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। तो वो स्टूडेंट हैं विकास जाखड़, जिनके बारे में कल मैंने चर्चा की थी। तो मित्रों, अब मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को जिन्होंने मेल लिखा है, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनको भी, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनको भी। कुछ नाम हैं: अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर से, गोविंद कुशवाहा देवरिया से, गोविंद मीना कोटा से, पवन घाट सिला से, सौरभ गिरधर तारकेश्वर साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और अतुल नागरगोने पुणे से। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अब कल मिलेंगे। नमस्कार।